आप हैं SBS हिंदी के साथ।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संबंध बेहतर करने के इरादे से इंडोनेशिया रवाना हुए प्रधानमंत्री अल्बनीजी। न्यू साउथ वेल्स में अगले 4 सालों में भर्ती होंगे लगभग 2000 नए पैरामेडिक्स और भारत में एक बार फिर बढ़े कोरोना मामले। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि चीन ने जिस तरह से 26 मई को ऑस्ट्रेलिया के P-8 समुद्री निगरानी विमान को रोकने की कोशिश की वो बेहद खतरनाक थी। आपको बता दें कि चीनी सेना का J-16 लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया के P-8 विमान के करीब से गुजरा और उसने विमान के सामने के हिस्से को क्षति पहुंचाई। इस विषय पर रक्षा मंत्री का कहना है कि उस वक्त P-8 की गतिविधि पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में थी क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ रहा था।
The South China Sea matters to Australia. Matters to Australia because most of our trade traverses the South China Sea. And so as a nation we are deeply invested in the UN Convention on the Law of the Sea. We are deeply invested in the rights of freedom of navigation in the South China Sea. And so to that end I want to make it also very clear that this incident will not deter Australia from continuing to engage in these activities.
वैसे राहत की बात यह रही कि विमान के सभी कर्मी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इंडोनेशिया के लिए रवाना होने से पहले कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बेहतर संबंध बनाने के लिए उनकी सरकार दृढ़ है। जकार्ता की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान एंथनी अल्बनीजी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित $200 मिलियन के जलवायु कोष पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि शपथ लेने के बाद से इस क्षेत्र की 2 यात्राएं पूरी करके उन्होंने साबित किया है कि वो दोनों देशों के संबंधों को लेकर कितने गंभीर हैं।
My discussions with President Widodo have been very cordial and positive. We had a good discussion on Friday. We've met, of course, in the past. I look forward to the next couple of days. I thank him for going out of his way and his government to welcome us so soon in the government's period in office.
ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा बाजार की समस्याओं के लिए जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने पिछली मॉरिसन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट ऑपरेटर ने गैस आपूर्ति गारंटी को सक्रिय कर दिया है जिसके बाद दक्षिण पूर्वी राज्यों को अधिक गैस मिलेगी। लेकिन नई सरकार ने ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि को सीमित करने के लिए गैस ट्रिगर समाप्त करने से इनकार कर दिया है। इस विषय पर लेबर पार्टी का कहना है कि ट्रिगर को कीमतों को सीमित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और ये अगले जनवरी में सक्रिय होने तक प्रभावी नहीं होगा। स्काई न्यूज से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि उनकी सरकार सक्रिय रूप से ऊर्जा आपूर्ति के लिए उपायों की तलाश कर रही है लेकिन पिछली सरकार ने उन्हें एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में छोड़ दिया था।
Their 9 years of denial and delay has ill-prepared our country for this crisis. I'm not blaming them for flooding and coal mines or for the Ukrainian situation or for gas, coal supply issues. What I am blaming them for very clearly is a lack of a coherent policy framework. Renewable energy is the cheapest form of energy. Storage and transmission, with more storage and transmission, we would have been very well placed to deal with this crisis. But because of previous governments' stop-start 23 energy policies and lack of embracing The technologies of the future, our country is ill-prepared.
लिबरल पार्टी ने पुष्टि की है कि 21 मई के चुनाव में उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है और इस बीच नव निर्वाचित विपक्षी नेता पीटर डटन अपनी शैडो कैबिनेट के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता पीटर डटन ने स्काई न्यूज को बताया कि गठबंधन 2022 के अभियान से सबक जरूर सीखेगा लेकिन वो ये जानते हैं कि मतदाता सिर्फ सरकार में नए चेहरे चाहते थे और उन्होंने उनकी नीतियों या पूर्व नेता स्कॉट मॉरिसन को अस्वीकार नहीं किया।
Look, in 1996, when John Howard was elected, the public were over you know, Paul Keating, when John Howard left office in 2007, they were ready to change government, and true also for Kevin Rudd and Julia Gillard. And after 9 years, people wanted to change as well. So that's the reality of what this election was about.
राज्य सरकार के अतिरिक्त प्रयासों और फंड के आने के बाद न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सेवा के लिए लगभग 2000 नए पैरामेडिक्स को काम पर रखने की उम्मीद है। राज्य के बजट ने कथित तौर पर अगले 4 वर्षों में 1850 नए पैरामेडिक्स और न्यू साउथ वेल्स में कई नए एम्बुलेंस स्टेशनों को जोड़ने के लिए लगभग $2 बिलियन का फंड घोषित किया है। स्वास्थ्य सेवा संघ के सचिव जेराड हाइज ने वित्त पोषण के वादे को पैरामेडिक्स के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। आपको बता दें कि वो पहले भी बेहतर वेतन की बात करते रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा संघ के सचिव जेराड हाइज का कहना है कि अतिरिक्त पैरामेडिक्स एम्बुलेंस सेवा के बाद समुदाय को बेहतर देखभाल दी जा सकेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई बढ़ने से वेतन वृद्धि की आगे भी जरूरत रहेगी। अब खबरें भारत से। राजस्थान उच्च न्यायालय ने लोअर डिवीजन क्लर्क्स की परीक्षा में धांधली का संदेह होने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अब परीक्षा के लिए नई तिथियां बाद में जारी की जाएंगी और उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि कई स्तरों पर न्यायिक सहायक और लिपिक के 1760 पदों को भरने के लिए परीक्षा का इस साल 13 मार्च को आयोजन किया गया था। भारत में एक बार फिर कोविड-19 मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन देश में कोविड मामलों पर बोलते हुए एम्स के वरिष्ठ महामारी विज्ञानी डॉक्टर संजय कुमार राय ने कहा कि मामलों की संख्या जरूर बढ़ सकती है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है अभी जो है बहुत नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ना जो है आज की डेट में बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि आरएनए वायरस है, म्यूटेशंस होते रहेंगे और इतने म्यूटेशंस हो गए कि जैसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में ओमिक्रॉन में हुआ तो री इन्फेक्शन भी होगा, आपके वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होंगे, बट उसका जो इम्पैक्ट जो है सीवियरिटी बढ़े डेथ बढ़े ये मैटर करता है, जिसको बहुत ही कम संभावना है, सो इट्स वेरी अनलाइकली कि वह जो डेथ बढ़ेगी सीवियरिटी बढ़ेगी। अपनी कंट्री में की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ सेकेंड वेव में और उसके बाद ओमिक्रॉन जब आया था जनवरी में अभी इस साल, तो इन्फेक्शन फैलने के बाद जो है काफी कम है।
सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत ₹55.94 और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 72 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सीरीज का 5वां टेस्ट अभी बाकी है और इसे लेकर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा, हालांकि टेस्ट मैच में अभी समय है लेकिन उनकी तैयारी लगातार चल रही है।
अभी काफ़ी टाइम है सीरीज के लिए, तो मैं अभी अपने घर के पास जाके अपनी ट्रेनिंग करूंगा, अपनी फिटनेस पे वर्क करूंगा, क्योंकि एक T20 एक शॉर्टर फॉर्मेट है और टेस्ट मैच एक लॉन्ग फॉर्मेट है, वहाँ पर आपको लंबे लंबे स्पेल डालना पड़ेगा वहाँ पर और कंसिस्टेंट एक जगह डालना, तो वही कंसिस्टेंट मैं अपने आप को वर्क करूंगा अपनी फिटनेस पे और अपनी बॉलिंग।
अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां दिन में आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल दिन में बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहाँ कल बारिश की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहाँ कल मौसम तो साफ रहेगा लेकिन तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल सुबह हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल आसमान साफ रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।